ओम शांति। परमात्मा की अवतरण भूमि जहां ज्ञान के सागर ज्ञान गंगाओं से मिलन मनाते हैं, ये वो स्थान और इस स्थान पर आज स्वयं ज्ञान के सूर्य आज हम सभी से मिलने आए हैं। ऐसे आदरणीय राजयोगी परम श्रद्धेय तपस्वी भाई जी का हम सभी भाई बहने स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं भाई जी। बाप दादा के ऐसे नूरी रतन हैं, लगभग 60 साल से 6 दशकों से अपनी सेवाएं अविरत दे रहे हैं और ये सेवाएं भी बहुत विशिष्ट, एक भजन और दूसरा भोजन। भजन मन ज्ञान के अमूल्य रतन वो स्वमान। अगर ब्राह्मण वर्ल्ड में किसी को भी कोई समस्या है तो हरेक यही कहेगा, सूरज भाई जी से पूछे ना इसका सवाल, देखो सूरज भाई इस पर क्या स्वमान देते हैं। इतना विश्वास सारे ब्राह्मण जगत का। दूसरा बाबा का वो भंडारा जिससे हर बाबा का बच्चा बाहर वाले संतुष्ट होकर भर भर कर दुआएं देकर जाते हैं और ये दो कार्य अविरत कर रहे हैं। ऐसे भाई जी की विशेषता, आप ज्ञान सरोवर में रहते हैं लेकिन आप स्पार्क विंग जो है उसके प्रिंसिपल एडवाइजर है। स्पार्क विंग के जो प्रयोग होते हैं, संकल्प शक्ति के प्रयोग, आदरणीय भाई जी के मार्गदर्शन में ही चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक भी भट्टी ऐसी नहीं होगी जहां भाई जी की क्लास नहीं हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा, और आप देखते हैं इवन अव्यक्त मिलन करना है ना तो पहले इन्हीं से हमें अव्यक्त मिलन हम कर सकते हैं। भगवान ने इतना सुंदर रोल इस संगम युग पर इस नूरे रतन को दिया है। आपकी क्लासेस यूट्यूब है, अवेकनिंग है, पीस ऑफ माइंड है, यहाँ पर चलती है न सिर्फ बी के लेकिन नॉन बी के भी समाधान। नहीं, ये जो है भाई जी का कार्यक्रम विशेष चाव से देखते हैं। आपकी सेवाएं सारे देश और विदेश में ऐसी फैली है जो हर जगह पर, विदेश में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, रशिया, लंदन, सब जगह पर आपको विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। और हाँ, आपको इतने सारे अवार्ड्स है कि जिनके हम नाम भी नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स और संकल्प शक्ति के जो प्रयोग है इस आधार से आपने कई सारी किताबें लिखी है। तो आदरणीय भाई जी जो रोज सभी का स्वमान बढ़ाते हैं, सबकी मन की शक्ति बढ़ाकर सबके बुद्धि की तार बाप दादा से जोड़ते हैं, ऐसे आदरणीय परम श्रद्धेय सूरज भाई जी को हम विशेष रिक्वेस्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है, कारण को निवारण करने की विधि। ओम शांति।
ओम शांति। कौन से सेंटर से हैं सभी? अच्छा, कैसा लग रहा है मधुबन में रहना? आज पहला दिन है ना, कल ओपनिंग हुई, दूसरा दिन है। वाइब्रेशंस कैसे लग रहे हैं? किसके वाइब्रेशंस हैं यहाँ? कौन सा बाबा? यहाँ सबसे ज्यादा तपस्या मामा और बाबा ने की, बहुत ज्यादा, और महानात्माओं ने भी की, लेकिन ब्रह्मा सबसे बड़े तपस्वी वही यहाँ थे। एक बार रशिया का ग्रुप हमारे पास आया था, बहुत साल पहले की बात है, सेवाएं शुरू हुई थी, 40 साल हो गए होंगे इस बात को। तो वे एक मशीन सी लेके आए थे जिससे वाइब्रेशंस चेक होते थे। तो उन्होंने बताया कि जो झोंपड़ी है, अभी बंद कर लो बहन जी, ये जो झोंपड़ी है यहां से और शांति स्तंभ, ये जो सड़क है, इस पे संसार के सबसे अधिक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। झोंपड़ी फिर बाबा का रूम, जहां बाबा अधिक समय रहे, झोंपड़ी में एकांत में रहते थे, शांति स्तंभ में संस्कार किया गया था। तो यहां के वाइब्रेशंस का सभी लाभ उठाएंगे तीन दिन। मैं एक बात से शुरू करता हूं आज के टॉपिक को, अपने संकल्प बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा, आपका संसार ही बदल जाएगा, पुरुषार्थ बदल जाएगा, समस्याएं बदल जाएंगी, घर के वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। अब मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा आपको सम्मिलित करना चाहता हूं। क्या कारण है? पुरुषार्थ तेज नहीं होता, ग्रस्त में रहते हुए, सब ग्रस्त वाले बैठे हैं। क्या कारण है? धारणाएं श्रेष्ठ नहीं हो पाती। क्या कारण है? खुशी नहीं रहती। क्या कारण है? मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। बोलो, उत्तर आपको भी देने हैं। गृहस्थ में रहते पुरुषार्थ तेज क्यों नहीं होता? चलो योग में सोच लेना। Thank you. भाई बोलेंगे बहने, बोलो भाई लोग, क्यों पुरुषार्थ तेज नहीं होता कार्य धंधों में रहते हुए? बोलते जाओ, ठीक बोल रहे, और बोलो जोर से थोड़ा बोलो। मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ क्लास, ये नहीं मैं कुछ सुना दूं आपकी बातें कुछ हो। डरता नहीं आती, आलस अलबेलापन, व्यर्थ बहुत प्रदर्शन पर चिंतन, ये तो रोज की बातें बाबा की मुरलियों की। और कुछ बताओ, संबंध और कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन समझते हैं माता है, आराम का जीवन, खाने पीने की भी दिक्कत होती है परिवारों में, सोने उठने की भी दिक्कत होती है, वाइब्रेशंस का। हाँ, आपका उन पे नहीं पड़ता, उनका पड़ता है। अब हमें सोचना है, चेंज करो थॉट्स, हम पावरफुल हैं उनसे, हजारों को एक साथ मिला दो तो भी पावरफुल हम हैं, हमारा प्रभाव भी उन पर पड़ेगा। मैं भी शब्द बोला, पर पड़ेगा ही, लेकिन कब? पावरफुल स्थिति होगी, अच्छे संकल्प होंगे, स्वमान अच्छा होगा, जो बाबा रोज प्रैक्टिस सिखाते हैं मुरलियों में, ऐसा दीदी बनो, आज भी था, रोज आता है, आत्मा देखो। ये प्रैक्टिस हमारे वाइब्रेशंस को पावरफुल कर देती हैं, इनसे दूसरों का असर हम पे नहीं, हमारा असर दूसरों पर पड़ेगा। बहुत बच्चे कहते हैं बाहर बहुत बुरा संग है बच्चों का, उनका असर हम पे बहुत पड़ता है। मैं कहता हूँ नहीं, हम भी तो पढ़े हैं, हमारा असर पड़ता था, किसी का पड़ता ही नहीं था, ये अपनी स्थिति की बात है। जितना अच्छा स्वमान योग, उतना ही असर दूसरों पर हमारा पड़ेगा। और अगर हमारा आभा मंडल ही कमजोर है, हमारे वाइब्रेशन ही कमजोर हैं, तो बैड एनर्जी, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, वो उसमें आती रहेगी। मान लो आपको एक बार क्रोध आ गया, आ जाता है घरों में, तो बैड एनर्जी आपके अंदर आती रहेगी जब तक चित्त शांत ना हो। और क्रोध को शांत करना पूरा दिन लग जाता है, सच सच बताओ, एक बार क्रोध आ गया सवेरे, फिर सारा दिन चित्त को शांत करने में लग जाता है, तब तक आपके पास बैड एनर्जी आती रहेगी। तो बहुत ध्यान देना है, चिड़चिड़ापन न हो। कई लोग चिड़चिड़े होते हैं एक अच्छी बात से, कौन सी अच्छी बात हो, थोड़ी माताओं में ज्यादा भाइयों में कम, सफाई प्रेमी ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन बाहर की सफाई में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई तो अंदर की सफाई पूरी गई, ये ना हो। हमने देखा, किसी का एक उदाहरण देता हूं, ऐसे तो बहुत मिलते हैं, फर्स्ट क्लास सेंटर्स, जरा तीन का कहीं नहीं, हमें भी जाते डर लगे कि भूल से चप्पल न ले जाएं, सब विधि विधान चप्पल यहां रखनी है, जाना ऐसे है, और अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी तो फिर बोल दो सब, उसकी खैर नहीं। अब ये स्थिति हुई है कि वो आत्मा डिप्रेशन में आ गई, क्यों क्यों? बहुत जरूरी है, जो आजकल बाबा हमें बहुत सिखा रहे, कितने साल से सिखाया, दुआएं लेना। मैं देने की बात नहीं कर रहा हूं, दुआएं लेना। इसलिए सभी ध्यान रखेंगे, हमारे कारण किसी की स्थिति बिगड़ना माना, दुआएं आएंगे, बद्दुआएं आएंगी, और ये बद्दुआएं हमसे जुड़ी ही रहती हैं, जन्म जन्म की बद्दुआएं भी हमारा पीछा कर रही हैं, ये हमें जानना चाहिए, जिससे मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। कईयों के मानसिक रोगों में जब हमने एक प्रैक्टिस कराई, क्षमा याचना करो, मैंने जिनको कष्ट दिया मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, चाहती हूं, कुछ ही दिनों में चित्त शांत होने लगा। वो जो बैड एनर्जी आ रही थी, समझते हैं ना अंग्रेजी का सब, बुरे बद दुआएं आ रही थी, वो कट गई, और तब चित्त ने चैन पाया, योग लगने लगा, नहीं तो नहीं। एक और कहानी सुना दूं, कहानी नहीं सच्ची घटना। एक विदेश की बहन आई, कई साल पहले की बात है, तब से मैंने शुरू कराया क्षमा। उसने मुझे कहा, मैं जानकी दादी के पास गई थी, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, क्या समस्या है? 13 बार हो गए मैं बाबा किससे मिलने आई हूं, पर मुझे कभी भी कोई अनुभव नहीं हुआ। बात तो बड़ी आश्चर्य की थी, और अच्छे होते हैं थोड़े ठीक ठीक धारणाओं में रहने वाले, सब धारणाओं के मैंने पूछा, सब अच्छी हैं, प्योरिटी अच्छी, खान पान अच्छा, डेली मुरली क्लास, अमृत वेला, सब अच्छा। मैंने सोचा कहाँ गड़बड़ हो रही है, बाबा आने वाले थे, फिर से वो बाबा से मिलने आई थी 14वीं बार। तो मैंने पूछा, आप अपने जीवन की कुछ चीजें बताओ। उसने पहली बात बोल दी, मेरे अंदर बदले की भावना बहुत रहती है, और 2-4 बातें बताई बस, मैं समझ गया था। तो मैंने उसकी बात समझ ली कि इस आत्मा ने पूर्व जन्मों में बदले की भावना के कारण बहुतों को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए उसकी बैड एनर्जी को प्रभु मिलन का सुख नहीं लेने दे रही है। उसको मैंने सिखाया, क्षमा याचना करो 11 दिन। पहला एक्सपेरिमेंट था ये मेरा, कई साल पहले की बात है। 4-5 दिन के बाद बाबा आए, उसने किया, तब उसको पहली बार सुंदर अनुभव हुए। सुंदर अनुभव माना डीप साइलेंस, बहुत ज्यादा प्रभु मिलन की खुशी, नशा हो गया बहुत ज्यादा उस दिन, बताया। तो हम इस चीज पे ध्यान दें, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा, हमारे ऐसी क्वालिटीज के कारण, ये देखो सफाई रखना क्वालिटी है, किसी की बद्दुआएं हमें न मिल रही हो। घरों में क्या करना होगा सबको, माताएं घरों को संभालती हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ होते हैं, कोई गलती करता ही है या नहीं करेगा, कोई गलती करेगा, डांटने डपटने की बजाय सिखाओ कि नहीं 3 बार सिखा दिया बस तुम सुधरने वाला नहीं है, फिर महावाक शुरू हो गए। बार बार सिखाओ, बाबा ने कितनी बार सिखाया हमें, रोज सिखाता है, मीठे बच्चे हैं ये ना करो। मैं देखता हूँ बाबा का कितना प्यार है, 1-2 क्रोध करने वाले थे बाबा के समय, बाबा उनको बहुत प्यार से, बच्चे क्रोध से नुकसान होता है, ठीक है आप कहेंगे वो तो भगवान है, लेकिन हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, हम भी तो महान हैं। इसलिए ये बात आज से पक्की कर दो, डांट डपट नहीं करेंगे, सिखाएंगे, बार बार सिखाएंगे, गलती करेंगे लोग, हम ये नहीं मान सकते कि कोई गलती ना करे, हम ये नहीं मान सकते कि जैसा मैं हूं, जैसी मैं हूं, आगे बोलो, वैसे ही दूसरे भी हों, भूल जाओ इस बात को, सब अलग अलग हैं। धामा का जो सुंदर ज्ञान बाबा ने दिया उसका प्रैक्टिकल में उपयोग करेंगे सभी, सबका पार्ट अलग अलग, इतना तो सब जरूर करेंगे। सबकी बुद्धि अलग अलग, सबकी ग्रहण शक्ति अलग अलग, कोई एक दो बार में सीख जाएगा तो किसी को 50 बार सिखाना पड़ेगा। सबकी ग्रहण शक्ति अलग अलग, सबके पूर्व जन्मों के कर्म विकर्म पुण्य कर्म अलग अलग, उसके आधार से ये खेल अब हमारे सामने है। और एक बात और याद रखेंगे, सभी को याद रखनी है, जो जिसको करना नोट करते जाएंगे, इस समय आपके साथी वे बने हैं जिनसे जन्म जन्म का कर्मों का खाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये नहीं बुरा ही है, अच्छा भी है, जिनका जन्म जन्म का कर्मों का हिसाब किताब है वो साथ आ गए हैं। कोई लेने आ गया है, कोई देने आ गया है, ये याद रखना। देना है प्यार से दे दो, अपनी स्थिति को संभालना। अब नोट कर लो ये बात, सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली वही है जो अपनी स्थिति को संभाल सके। ठीक बात है, पसंद है? कई लोग बड़े पावरफुल होते हैं प्रैक्टिकल में होते हैं, पर स्थिति को नहीं संभाल पाते। जब बिगड़ती है तो बहुत बिगड़ती है। एक चीज और ध्यान रखना है, जल्दी ही परेशान हो जाना, बचेंगे इससे। इस सब के लिए बहुत अच्छे स्वमान चाहिए हमें, बहुत अच्छा योग चाहिए, मुरली का बल चाहिए, मुरली का रस चाहिए जीवन में। जब से ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू हुआ कोरोना से तो लोगों को आदत पड़ गई है, पहले कम आदत थी, आलस और अलबेलापन आ जाता है। सोएंगे क्योंकि मुरली में जाना नहीं है, बाथरूम में सुन लेंगे मुरली तो, दो बार सुन लेंगे, कोई तीन बार भी सुन लेते हैं, लेकिन बैठकर एकाग्रता के साथ सेंटर में सुनने का सुख अलग होगा। केवल हम मुरली सुनने नहीं जाते, उसका सुख पाने जाते हैं, उसकी एनर्जी लेने जाते हैं, ये दो बातें भूलना नहीं। बहुत सुख है मुरली में, पढ़ाने वालों को भी सुख भरना चाहिए, आनंद भरना चाहिए, और उन चीजों पे अंडरलाइन करानी चाहिए। आपके आप में से कई होंगे घर गीता पाठशाला होंगी, किस किस के घर हैं गीता पाठशाला वाले, हाथ उठाओ। ठीक है, मुरली सुनाना सीखना है, वो बहुत बड़ी कला है, वो कला दादी प्रकाश मणि में सबसे श्रेष्ठ थी, क्योंकि उनके सिर पर अव्यक्त बाप दादा ने कलश रखा था। एक तो है सबके सिर पे कलश रख दिया, उनके सिर पे प्रैक्टिकल रखा था, और उनको अपनी एनर्जी भी दी थी। मुरली में रस भरना, तब सुनने वालों को रस आएगा। उन चीजों पे ध्यान खिंचाना जो ईश्वरीय नशे की हैं, जो पुरुषार्थ को बल देने वाली है। कई लोग उन चीजों पे तो ध्यान दिलाते हैं जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाएं कोई सुनना नहीं चाहता, सुनना चाहते हैं नशे की बात, खुशी की बात, जो हमें आगे बढ़ाने वाली है वो बातें। तो सेंटर में जाके ही सुनने में भलाई है। रोज आप अपने में सुख भर के आए, वहां से एक बल मिलेगा रोज का। तो हमें कारणों को हटाते चलना है। मैंने बाबा की मुरली में एक बात सुनी थी, बहुत पहले की बात है, वो आई नहीं दोबारा, शायद मुरली थी या बाबा का संदेश था कोई बहुत अच्छा। मैं सुनाता हूँ क्लासेज में, वो समस्याएं क्या हैं? समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। ये बात मुझे बहुत प्रिय लगी, तो मैंने वहीं मुझे ख्याल आया, गुलजार दादी के द्वारा मैसेज ही था ये, कि अगर कमजोर मन से समस्याएं पैदा होती हैं तो पावरफुल मन उन्हें नष्ट भी तो करेगा। यहां से मैंने पहले अपने लिए प्रयोग शुरू किए, कार्यों के लिए प्रयोग शुरू किए, फिर ये समाधान किया। बाबा की दो बातें सुना देता हूं आपको, अव्यक्त बाबा की, बहुत पहले की हैं, आप लोग उन्हें नहीं जानते, इसी हॉल में और हिस्ट्री हॉल में, क्योंकि ये हॉल बना था 74 में, इसी हॉल की बात है, 83 की बात है। अव्यक्त बाबा आए, दीदी मनमोहिनी पहले मिलती थी बाबा से मुरली के बाद, तो बाबा ने उन्हें कहा एक दिन आएगा तुम्हारा यज्ञ का सारा कारोबार संकल्प शक्ति से चलेगा। मेरे लिए बहुत सुंदर और गहरी बात थी, जब भी दीदी मिलती थी तो हम ध्यान से सुन ले, तब ये माइक वाइक बहुत कम होते थे, पास ही बैठे होते थे, बहुत बहुत काम आई, तुम्हारा कार्य संकल्प शक्ति से चलेगा। दूसरी बार मिलन हुआ, वो दीदी का लास्ट ईयर था इस धरा पर, दूसरी बार मिलन हुआ, बहुत गहरी बात है, जो ना समझ सके छोड़ देना। बाबा ने कहा जैसे तुम कहते हो कि जो ड्रामा में होगा हो जाएगा, कॉमन बात है, हम सब कहते हैं। बाबा ने कहा जब तुम संपूर्णता के समीप पहुंचोगे तो तुम ये कहोगे जो हम सोचेंगे वही होगा। ये बड़ी बात है, इसलिए आज मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, या मैं कहूं सिखा रहा हूं, सीख लेंगे। बहुत सारे कार्य संकल्प से करने शुरू कर दो, सभी शुरू करेंगे भट्टी से ही, भट्टी में जाने के बाद अपने घर। और बाबा की चार बातें नोट कर लो, आपके कई कारण समाप्त हो जाएंगे, निवारण मिल जाएगा। ये सब बाबा के महावाक्य हैं, मैंने जो कुछ सीखा वो बाबा के महावाक्यों से सीखा, उसमें मेरे चिंतन की कोई बात नहीं। लिखो, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, पहली बात, चार बातें लिखनी है, पहली बात, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। दूसरी बात, सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी, सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। बहुत सफलता तो मनुष्य को हर कदम पे चाहती है, रोज चाहती है। हमने इसके बड़े बड़े अभ्यास कराए युवकों से, जो अच्छे एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं नौकरियों के लिए। तीसरी बात, वे संकल्प शक्ति से ही सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात, संसार की सबसे बड़ी बात है ये, इसके लिए ही मुझे ये बात याद आई। आप संकल्प का प्रयोग करके काम किया करेंगे अपने। चौथी बात, वो तो बड़ी बात है, जो करेंगे उनको होगा, एक दिन आएगा संसार उनके चरणों में झुकेगा। पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं, इसका अभ्यास करेंगे आपका घर तीर्थ बन जाएगा। अभी अभी एक MLA हमारे यहाँ प्रोग्राम में आया हुआ था, वो मिनिस्टर, अब वो MLA है, 6 बार रह चुका है, मेरे से मिलने आया, कहा हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, हमने गांव गांव सजा दिए हैं, जितना भी क्षेत्र में गांव आते हैं सबको सजा दिया है, अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया, हमारा गांव हमारा तीर्थ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, हम तो कहते हैं हमारा घर हमारा तीर्थ बन जाए, सब अपने अपने घरों को तीर्थ बनाएंगे, भाई लोग बनाएंगे, बस इस देवी बनना है। ये समय पूरा हो रहा कलयुग का, अब कोई ये न सोचे कि बाबा तो कहता ही आता है, हुआ तो है ही नहीं, कोई आता उसके पास, आता कोई, कहते क्या करेंगे 100 साल पड़े हैं ना, अगली बार आएंगे, एक भी ना आता। जो जो टाइम दिए उसके पीछे लक्ष्य था भगवान का, वो झूठ थोड़ा ही बोलता है, कुछ आत्माओं को तैयार करना, क्योंकि हमारी जो मंजिल है वो छोटी नहीं है, एवरेस्ट की चढ़ाई तो उसके आगे कुछ भी नहीं, वो लंबी मंजिल है, उसमें गहन तपस्या की जरूरत होती है, प्योरिटी को परफेक्ट करना 1-2 साल की बात नहीं है, सालों साल लगते हैं, कर्मेंद्रियों को शीतल करना, चित्त को शांत करना, स्वप्नों को निर्मल करना, स्थिति को सत्वप्रधान बनाना, इसके लिए टाइम दिया उसने, जल्दी करो, अब भी मुरली आ रही है रिवाइज होके, जल्दी करो टाइम कम है, टाइम कम है, कुछ होता तो है नहीं, छोड़ छोड़ के चले गए बहुत लोग, कुछ हो तो नहीं रहा है, जब होगा तब कितना कष्ट होगा लोगों को, इस उनको नहीं होता जिनके साथ कुछ हुआ नहीं है, जिनके साथ हुआ उनको पता होता है, कोरोना में जिनको कष्ट हुआ उनको पता क्या था भाई, चाय भी नहीं मिलती थी, मुश्किल हो गया था दूध लेना भी, स्थिति लंबे समय की अच्छी होगी तो पहली चीज तो परिस्थितियां आएंगी नहीं, और अगर आ गई तो हम उनको सहज सामना करके समाप्त करेंगे, इसलिए लंबे काल का अभ्यास, क्योंकि 2 युग की स्थापना हो रही है, हम इतना कह देते हैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा बाबा तो हल्की हो गई बात, 2 युग 2500 साल रचे जा रहे हैं, हर आत्मा का 2500 साल का भाग्य बनाया जा रहा है, 2500 साल में कितने दिन होंगे, एक एक दिन का रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ, आप चिंतन करना, जिसको यहाँ कदम कदम पर सफलता है उसे हर जन्म में हर रोज सफलता होगी, ये लिंक है, जो यहाँ ईश्वरीय खजाने से भरपूर हैं, हर जन्म खजाने भरपूर होंगे, जो यहाँ संपूर्ण शांत हो गए जन्म जन्म शांत रहेंगे, जिसने यहाँ माया को जीत लिया युद्धों में भी उसकी जीत होती रहेगी, कोई उन्हें हरा ही नहीं सकेगा, ये लिंक है, इसलिए लंबे काल के अभ्यास की जरूरत है आप सभी को, यहाँ दृढ़ता लानी है कि रोज भी लंबा काल अभ्यास करेंगे रोज, क्योंकि आप में से कईयों के प्रश्न है, हमारे पास तो लंबा काल है ही नहीं, हम तो 2 साल से ज्ञान में आए हैं, रोज लंबा काल, और जो पुरुषार्थ करते हैं उन्हें मदद बहुत मिलती है, पुरुषार्थ करने में भी समझ रहे ना गहरी बात, जो पुरुषार्थ करेंगे करने की दृढ़ इच्छा रखेंगे उन्हें पुरुषार्थ कराने में भी ईश्वरीय मदद मिलेगी। ये ध्यान रखना है। आप संकल्प करो मुझे उठना है 4 बजे, उठेंगे? मेरे पास तो माताएं ऐसी आती हैं, हम कभी भी सो जाओ 4 बजे उठेंगे ही। कुछ भी हो जाए तो मदद होती है बहुत ज्यादा। घरों की दिनचर्या सबकी अलग अलग होती है। कल कोई आए, इस उदाहरण से आपको कह रहा हूं, मानसिक तकलीफ बढ़ती जा रही उन्हें, मैंने कुछ कहा कि सवेरे उठ के ये करना है, मुझे लगा उसके चेहरे से कि वो देर से उठता है बहुत। कितने बजे उठते हो? 8:30 बजे। उसकी मैसेज थी, आप कितने बजे उठती हो? 6 बजे। मैंने कहा क्यों जल्दी नहीं उठते? क्या बहनों ने नहीं सिखाया? कि सिखाया तो है, बच्चे लेट आते हैं नौकरियों से, खाना पीना खाते हमें 12-1 बज जाता है। ये आपकी परिस्थितियां हैं घरों में, इनको ठीक करना है। कुछ माताएं हैं, पति 12 बजे आता है बिजनेस से, मैंने उन्हें सिखाया था, कहा क्या करूं, अब 12 बजे सो के तो 12 बजे तो आता है, फिर 1 बजे सोएंगे, 4 बजे उठना संभव नहीं है। मैंने कहा तुम तब तक एक नींद पूरी कर लिया करो जब तक वो आता है। मान गई वो, ये तो अच्छी बात है। उसे पता 12 ही रोज आता है, 12 बजे उठ के खिलाया पिलाया सो गई, आराम से 4 बजे उठती है। कारण को समाप्त करना अपने हाथ में। मैंने कल भी उसे कहा तुम्हारा मानसिक रोग बढ़ता जा रहा है, अगर तुम दिनचर्या नहीं बदलोगे और ये मानसिक रोग बढ़ गए तो क्या करोगे? फिर डॉक्टर के पास जाते हैं मानसिक रोग लेके लोग, दवाई देते हैं डॉक्टर, दवाई से क्या होगा? नींद आएगी, ब्रेन डल होगा। मैंने कहा दवाई नहीं लेना कभी, कि मैं लेके देख चुका हूं, 3 ही मास खाई थी, सब डल हो गया, मैंने छोड़ दी है, तो ज्ञान में आया। अच्छी बात है ना, दवाइयों ने ज्ञान में तो ला दिया उसको। कहा ब्रेन डल हो रहा था, इसलिए कारण घरों में कुछ भी होंगे लेकिन निवारण करना अपने हाथ में। बहुत बिजनेस वाले दुकानदार आते हैं, हम दुकान को भाई जी 10 बजे बंद करते हैं, फिर 11 बजे तक घर आते हैं, 12:30 तक सोते हैं। प्रैक्टिकल कारण, मैंने कहा 8 बजे नहीं बंद कर सकते? कहा कोई कोई ग्राहक आ जाता है। मैंने कहा करके तो देखो, 15 दिन बोर्ड लगा दो 8 बजे दुकान बंद होगी। उन्हें लगाया, फिर मुझे बताया कि उससे पहले ही ज्यादा आने लगे। हमें दिनचर्या ठीक हो गई, हम 10:30 तक सोने लगे। निवारण करना अपने हाथ में। जल्दी सोना जल्दी उठना, ये तो वैसे भी स्वस्थ रहने का, खुश रहने का, एनर्जेटिक रहने का तरीका है। ऐसे ही अब मैं एक और चीज आपको कह रहा हूं, निवारण करना है सबको। घर में कोई एक व्यक्ति तूफानी होता है, सबके घरों में है, एक तो होता है, जिसके घर में नहीं है वो परम भाग्यशाली है। एक व्यक्ति तूफानी, तूफानी माने स्थिति बिगाड़ने वाला। एक माता की और कहानी आई कल, उसके परिवार वाले आए दूसरे, कहा 2 बच्चे मैरिड, इस बहन का पति मर गया है, अब ये अति उदास रहती है, ज्ञान में लंबे समय से है, क्या करें? मैंने पूछा भाई पति के जाने से तो मैंने बहुत लोग उदास होते बढ़ते ही जाएंगे, परिस्थिति में अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का मार्ग निकाल ले, वही सच्चा ज्ञानी है। मुझे बहुत प्रिय लगा, तब से याद रहा मुझे। कुछ भी परिस्थिति है, जिसको आगे बढ़ना है वो मार्ग निकाल ही लेगा। पानी नहीं मार्ग निकालता क्या? पानी के लिए तो प्रसिद्ध है ना, नदी बह रही है, सामने पहाड़ आ गया, किनारे से निकल के दूसरी तरफ पहुंच जाएगी। हम भी मार्ग निकालना सीखें। पुरुषार्थ में ये बाधा है, ये मार्ग है। इस तरह पुरुषार्थ नहीं हो सकता, इस तरह हो सकता है। दिनचर्या बहुत बिजी है, उसी में कुछ किया जा सकता है। चिंतन बदलो, मेरे पास टाइम नहीं है। है टाइम या नहीं? कई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। किसके पास टाइम नहीं होता? जिनको करना नहीं है उनके पास टाइम नहीं है। और जो बातों में बहुत रहते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। जो टाइम वेस्ट करते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता। जो थोड़े से काम को लंबे समय में करते हैं, ये कईयों को आदत होती है। काम थोड़ा सा होगा, बहुत लंबा टाइम लगाएंगे, लगेगा सारा दिन बहुत बिजी हैं, चुस्त नहीं होते कामकाज में, उनके पास टाइम नहीं होता। तो टाइम कहां से आएगा? मैं तो उन्हें कहा करता हूं मेरे पास से उधार ले जाओ। जिसको कुछ करना है उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं है। जिसको पता है, जिसने अपने जीवन का लक्ष्य महान बना लिया, वो टाइम निकालेंगे ही। आज बाबा क्या कह रहे थे, यहाँ आते हो तो कितने बजे उठ जाओ? ठीक है, मतलब बहुत जल्दी उठ जाओ। तब तो यहाँ बाहर तो घूम नहीं सकते थे, बाबा के समय डर होता था, क्योंकि बाहर झाड़ियां थी, भालू आते थे, और जो हमारी बाउंड्री की दीवार है वो भी केवल 2 फुट की थी, उसके ऊपर थोड़े से तार लगे हुए थे 2 फुट के, तो भालू तो उनको कूद के आराम से आ जाते हैं, तो डर रहता था। तो इसलिए हॉल में ही लोग बैठते थे, थोड़े ही लोग होते थे। तो भी बाबा कितनी उमंग दिलाते थे, उमंग में रहने से टाइम बहुत मिलेगा। कुछ करना है, क्या करना है उस लक्ष्य को अपने पास लिखो, ये करना है मुझे, तो अनेक कारण पीछे छूट जाएंगे। कारणों को पीछे छोड़ना है हमें, और जिसको आगे बढ़ना हो उसे कोई कारण रोक नहीं सकता। सच्ची बात है या नहीं? पिछले ग्रुप में एक बहन आई दिल्ली से मेरे पास, परिचय दिया, हमारी फैक्ट्री है, पति 2 साल ज्ञान में चला, फिर छोड़ दिया, अब मुझे कह रहा था तुम नहीं जाओगे अनसरोड। मैंने कहा मुझे तो जाना है, वो मना कर रहा था। मैंने क्या किया, टिकट बुक करा लिया, गाड़ी मंगा ली, उसमें बैठी, सामान रखा और उसको टाटा किया, मैं ज्ञानसरोवर जा रही हूँ। मैंने कहा तुम तो बड़ी बहादुर हो, जाने के बाद कुछ नहीं होगा? क्यों कुछ होगा, अपनी ताकत चाहिए, निर्भयता चाहिए। जब भगवान हमें साथ दे रहा है तो छोटे मोटे कारण हमें कैसे रोक सकते हैं? मनुष्य रुकता है अपनी कमजोरियों से, कोई और शक्ति मनुष्य को नहीं रोक सकती, उसकी अपनी कमजोरी उसको रोकती है। हम तो आए तो कहानियां सुना करते थे, यक्की बहुत माताएं बांधे ली होती थी कि रात को जब सब सो जाते हैं मैं बाथरूम में बैठती हूँ, लाइट जलाती हूँ, मुरली पढ़ लेती हूँ, किसी को पता नहीं मैं मुरली पढ़ती हूँ। फिर उस मुरली को कहाँ रखती हूँ, गेहूं होते हैं बहुत सारे उनके अंदर छुपा देती हूँ। जिसको कुछ करना है उसको कोई नहीं रोक सकता। अब तो इतने बंधन नहीं है, उस टाइम ज्यादा बंधन होते थे, विघ्न ज्यादा डालते थे, क्योंकि चारों ओर ब्रह्मा कुमारियों का नाम थोड़ा ज्ञान ऐसा है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे लोग बोलते रहते थे। अब तो बहुत ज्यादा प्रचार हो गया है। उसकी भी कहानी सुना दूं, दिल्ली में मेला हुआ 73, पहला मेला यक्का। पांडव भवन जो करोल बाग में बड़ी बिल्डिंग है, वो पहली बिल्डिंग थी जो यज्ञ ने खरीदी थी उन दिनों 3 लाख में। उसकी ओपनिंग के लिए ओपनिंग हुई और बड़ा मेला किया, पहला मेला। तो आर्य समाज बहुत विरोध करता था, पर्चे वर्चे बांटते थे। तो मेले में जो ऑल इंडिया का आर्य समाज का अध्यक्ष है, उसका नाम था राम गोपाल सालवाला, सौ लौटता था सदैव। तो उसको बुलाने का संकल्प किया, उसके पास एक बार गए, मना कर दिया उसने, दूसरी बार चले गए, कन्विंस किया, आखिर आ गया। 1 घंटा मेला देखा, उसके बाद आर्य समाजियों का विरोध लगभग समाप्त हो गया। तो देखो ये बाबा का चमत्कार है ना। विरोध तब होता है जब लोगों को गलत फहमी होती है। उन्होंने यहां कर देखा कि इनका ज्ञान तो हमसे भी आगे है, मैं आर्य समाज में जन्म लिया और सब पढ़ा था, मुझे पता है ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान आर्य समाज से बहुत आगे है। और आपको काम आएगी एक बात सुना दूं, सत्यार्थ प्रकाश में लास्ट में लिखा रहता है, बिल्कुल लास्ट पेज के भी लास्ट में, स्वामी दयानंद ने कहा, अगर भविष्य में कोई मेरे से बड़ा विद्वान आए और तुम्हें कुछ और सत्य बात सुनाए तो उसके सत्य को स्वीकार करना है। क्लियर लिखा है, वो हर सत्यार्थ प्रकाश के पीछे लिखा रहता है। तो उन्होंने समझ लिया कि जो फिलोसफी आर्य समाज की है उससे कुछ कदम आगे हैं ये। मूर्ति पूजा सोचते थे ना, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, श्री कृष्ण बनाते हैं, शायद मूर्ति पूजा भी करते होंगे, उन्हें पता चला नहीं ये तो इनका लक्ष्य है। तो हमें अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लक्ष्य बनाएंगे, बनाना है सबको। अब कैसे लक्ष्य बनाएंगे, मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं, उसको लेकर कारण सबको हटाने हैं पुरुषार्थ से, क्योंकि कारण किसी के काम नहीं आएंगे। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, खतरनाक सा थोड़ा, कारण देना माना कारागार में जाना, इसलिए मैंने खतरनाक कहा। ये शुरू के महावाक्य है, बाबा उमंग दिलाने के लिए ये अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। लक्ष्य कैसे बनाएंगे, 3 मास का लक्ष्य बनाओ, मुझे 3 मास में ये करना है। चार्ट लिखने का ये सुंदर तरीका है। योग का लक्ष्य, मुझे 3 मास में योग का चार्ट इतने तक पहुंचाना है, मुझे 3 मास में परचिंतन नहीं करना है, कोई भी धारणा ले लो, मुझे 3 मास में अपनी खुशी को स्थिर करना, स्थायी बनाना है। ये मैं अनेक बात सुना रहा हूं, एक एक लेनी है 3 मास के लिए। मुझे 3 मास में ये स्वमान अभ्यास करने हैं, उन पे ध्यान दो, बस इतना ही, 3 पॉइंट या 4-5 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं। 3 मास का लक्ष्य बना लो, और उस आप में से जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हो वो एक एक हफ्ते का बना लो, 3 पॉइंट में, बस उस पर ध्यान देना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं 5 बार बाप दादा का आह्वान करूंगा, मैं भोजन योग युक्त होकर खाऊंगा साइलेंटली, मैं अपनी वाचा पर बहुत कंट्रोल कर लूंगा, एक एक बात लेनी हफ्ते हफ्ते के लिए, मैं तो कई बातें सुना रहा हूं, मैं प्रदर्शन से मुक्त रहूंगा, मैं इस स्वमान में रहूंगा, एक हफ्ते के लिए 2 स्वमान ले लो, इनका अभ्यास करूंगा, तो आपको जीवन में सदा नया उमंग बना रहेगा। मुझे अपना एक अनुभव याद आ, छोटा सा पर बड़े काम आया मेरे। हम लोग पांडव वन में पांच पांच भाई एक कमरे में रहते थे, तो जब रात को 10 बजे क्लास पूरा होता था, हम लोग दूध बांटते थे, उसके बाद सोने जाते थे 10:15 तक। तो एक दो लोग ऐसे थे जो बात ही कर रहे हैं, एक ऐसे थे जिसको लता के गीत सुने बिना नींद नहीं आएगी, रेडियो ही होता था उन दिनों, और तो कुछ था नहीं। अब मैं सोचा मैं क्या करूं, तो देखो उनकी कमी मेरी उन्नति का साधन बन गया। मैं सोचा मैं छत पर घूमूंगा एक घंटा, अच्छा योग करूंगा, और मैं 10:15 बजे आऊं और सीधा छत पे, और जब देखूं सब सो गए तब कमरे में। वो क्रम मैंने 16 साल चालू रखा, एक घंटा रोज, कभी 10 बजे ही आ जाते थे। बहुत फायदा हुआ। अगर हम कारण देते, शिकायत करते, उनसे कहा सुनी करते, सो जाओ तुम जग सोने नहीं दे रहे हो, ये टाइम है क्या बात करने का, तो संबंध बिगड़ते हैं। अपना मार्ग निकाल लेने से उन्नति हो गई, बहुत आनंद आया उसमें। ऐसा योग करने से सवेरे का योग और पावरफुल हो जाता है। तो कारण नहीं निवारण हम सबके पास हैं। रोज निवारण नहीं करते क्या? बाइक पे जा रहे हो, सामने से लोग आ रहे, हटा लेंगे या नहीं? या तुम हटो, ट्रक आ रहा है उसे कहेंगे क्या तुम हटो? हम जानते हैं कैसे हर कारण का निवारण करना है। पानी की प्यास लगती है, ऑफिस में कई लोग अपना ही पीते हैं, अपना थर्मस ले जाते हैं। सबके पास निवारण होते हैं, उसको ढूंढना है। कारण को स्वीकार करके बैठ नहीं जाना है, ये पक्का कर दो आज से। हम तो सवेरे उठ नहीं सकते, बहुत लोगों ने मान लिया है, नहीं, ऐसी कमजोरी को स्वीकार न करो। क्या सोचेंगे? कुछ भी हो जाए भगवान का आदेश है, वो बहुत कुछ सवेरे सवेरे देता है, अब मिस कर दिया तो जन्म जन्म मिस हो जाएगा, इसलिए उठेंगे ही, बाद में सोएंगे। सोने के तो और टाइम बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो दृढ़ता मनुष्य को विजय की ओर ले चलती है। सभी पुरुषार्थ की अच्छी प्लानिंग करना, मधुवन में बहुत सुंदर चांस मिला है सभी को, सुंदर है ना, रहने को नहीं मिलता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं। 3 दिन हमें कमरा दे दो, रहना है, भरा रहता है, थोड़ी हो गई है अकोमोडेशन, भर जाएगी कुछ दिन में। तो सभी अब सोच लो, मेरे तीव्र पुरुषार्थ में मैंने कौन सा कारण रखा हुआ है। हर एक के अलग अलग कारण होते हैं, कुछ के कारण ठीक भी होते हैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती, और कुछ गड़बड़ है, व्यस्तता बहुत है, ये काम इस टाइम नहीं कर सकते, दूसरी टाइम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल आप अपने बना सकते हैं, मान लो वो टाइम आपके व्यस्त हैं, अपने ट्रैफिक कंट्रोल बना लो, उस पे 1 मिनट भी अच्छा योग कर लो, तो स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। बनानी है सुंदर स्थिति, खेल तो दिनों दिन बिगड़ता जाएगा। खुशी की बात सुना दूं एक दो, फिर समाप्त कर देते हैं। कारण निवारण तो चलते रहेंगे, मुझे तो पहली बार ये टॉपिक दिया था, मैंने कहा चलो बाबा बहुत कहते हैं मुरली पे। भारत फिर भरपूर बनेगा, बनेगा या नहीं? किससे भरपूर? धन धान्य से भरपूर। हम प्रकृति के मालिक बन जाएंगे तो प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रदान करेगी। सुंदर बात जो मैं कह रहा था, भारत के ही सागर में, सागर होते हैं ना, एरिया बटे होते हैं ना देशों के, भाई ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर में भी आधा हिस्सा भारत का है, बाकी उधर का है, कहा एक सोने का लंबा चौड़ा पहाड़ है। किसने बताया ये नहीं बताऊंगा। कहा वो भारत से मिल जाएगा और उससे सोने की बड़ी बड़ी स्लैब्स ऐसे ही निकलेंगी जैसे आजकल ये निकालते हैं ना, मैंने कोटा स्टोन निकलता है वो रोड के पास ही, बड़े बड़े निकल जाते हैं, उन्हें निकालते रहते हैं। मैं भी अभी पता चला मुझे कुछ दिन से, क्योंकि क्या होगा ये ज्ञान की बात भी, इस धरती है झुकी हुई है ना, कितने डिग्री 23.5, सुनामी में लोग कहते थे 22.5 हो गई है, तो 22.5 23 ये झुकी हुई है। अब वैज्ञानिकों को पता चल गया है कि इसके जो पोल्स हैं, पोल्स माना दोनों हिस्से सिरे, वो बदल रहे हैं, तो ये सीधी होने की तरफ पड़ेगी और कोई भूकंप इतना जबरदस्त आएगा, ग्लेशियर जानते हैं ना भाई लोग, तो कम से कम जानती है बहने, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ वो पिघल जाएंगे, जिस दिन एटम बम छूटेंगे, गर्मी बहुत होगी, वो फटाफट पिघलेंगे। अब तो धीरे पिघल रहे ना, तो धीरे से कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। एक साथ पिघल के जो पानी सागर में आएगा तो ये धरती असंतुलित हो जाएगी और सीधी हो जाएगी। तो जब सीधी हो जाएगी तो पानी इधर का उधर, सागर इधर का उधर, तो बहुत सारी भूमि निकल आएंगी, बहुत सारी जगह सागर सब कुछ समाप्त कर देगा। ये खेल पूरा अंत में होगा जब विनाश हो चुका होगा, इससे सफाई बहुत हो जाएगी। देखो एटॉमिक एनर्जी जब बहुत विस्फोट होगा, अभी आप सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में रेडिएशन फैल गया है, अभी जब एटम बम पूरे ही छूटेंगे, अभी तो ये मामूली काम हुआ है, एटम बम पूरे ही छूटेंगे तो सारा आकाश मंडल इस रेडिएशन माना बुरी चीजें, बुरे कण, पूरे कीटाणु समझ लो, फैल जाएंगे, तो क्या होगा, तेज बारिश होगी, एक आध दिन नहीं कई दिन तक, और वो सब बह के सागर में चला जाएगा। तो बहुत सुंदर प्रभु प्लानिंग है सृष्टि को क्लीन करने की। एटम बम से एक और फायदा होगा कि जो अंतरिक्ष है ये स्वच्छ हो जाएगा, अब इसमें गंदगी बहुत है, तो हम एक ऐसे स्वर्णिम काल की ओर चल रहे हैं उसकी छवि अपने नैनों में बसाया करें। कैसा समय आ रहा है, ये ड्रामा एक फिल्म की तरह चल रहा है ना, गति है इसमें, ये सीन जाएगा, सतयुग का सीन आ रहा है, वो हमारे सामने होगा, बस ऐसे ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे और इस परिवर्तन का, महाविनाश का असर स्थिति पर नहीं पड़ेगा। कितना मनुष्य को कष्ट हो रहा हो लेकिन वो याद करे कि इस थोड़े से कष्ट के बाद बहुत सुंदर होने जा रहा है, तो कष्ट को सह लेता है ना। तो सदा भविष्य की छवि नैनों में समाये रखना रोज, इसलिए बाबा कहते हैं 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। तो मैंने मोटी मोटी छोटी बातें बताई, लेकिन स्वमान का बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व, उसके अभ्यास पे ध्यान देना तो सभी लोग आपको सम्मान देंगे। जो जितना स्वमान में रहेंगे उसको उतना ही सम्मान मिले, कोई आपका विरोध करेगा ही नहीं, चाहे आपके सब एंटी हो घरों में, सब आपको प्यार और सम्मान की नजर से देखेंगे। अभ्यास करके देखो। ओम शांति।
आदरणीय भाई जी की क्लास ऐसे चलती है, कैसे लगता है, चलती रहे है ना। तो हम सभी भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और ये शुक्राना सम्मान के रूप से भी होगा, साधना बहन जी आएंगे और भाई जी का सम्मान करेंगे। सम्मान बाबा की फ्रेम देकर कर रहे हैं वो। और उसके साथ साथ अभी हम योग करेंगे तो एक माता जी जो है शांता बेन किंग्सवे कैंप आए हैं, माता जी हैं, आइए हम सभी योग करेंगे और माता जी बाबा का एक सुंदर सा गीत गाएंगे। इसके बाद ब्रेक है, आपको 11:45 तक वापस आ जाना है।
मिला तुम्हारा साथ हो बाबा, मिला तुम्हारा साथ हो बाबा, मिलनी प्यारा प्यारा, मिला तुम्हारा साथ हो बाबा, मिलनी प्यारा प्यारा, नजर के सामने हो बैठे हो पास, नजर के सामने हो बैठे हो पास, ये दीव नजारा नजारा, मिलनी प्यारा प्यारा, तरस रहे भक्त पल भर हमारी झलक, तरस रहे भक्त पल भर तुम्हारी झलक पाने लिए, तरस रहे भक्त पल भर तुम्हारी झलक पाने लिए, कठिन साधना साधते भक्त जब तक तुम्हारे लिए, जब तक तुम्हारे लिए, पर सम्मुख आकर तुमने, पर सम्मुख आकर तुमने किया सिंगार हमारा, मिलन है प्यारा प्यारा, भाग जगाया जीना सिखाया, भाग्य जगाया जीना सिखाया, देकर शुभ शिक्षाए, जैसे बरसे सुख का सावन, बरसते हम पे दुआए, बरसते हम पे दुआए, हर सब कर रहा है पाकर तुमको, हर्ष रहा है पाकर तुमको, अब तो ये जग सारा मिलन है प्यारा प्यारा, मिला तुम्हारा साथ हो बाबा, मिला तुम्हारा साथ हो बाबा, मिलनी प्यारा प्यारा, मिलनी प्यारा प्यारा।